का था, रूह वही, रूह नया।
आप सुन रहे हैं कहानी अंतिम प्रश्न, और ये ली गई है शर्लॉक होम्स के संकलन से। हाल ही में लिखने के लिए मैंने बहुत ही बुझे हुए मन से अपनी कलम उठाई है, जिसमें मैंने उन विशेष दिनों को संजोकर रखा है जिससे मेरे साथी को प्रतिष्ठा मिली थी। क्योंकि मैंने बहुत ही गहराई से महसूस करता हूं, इसीलिए ये अस्पष्ट या बिल्कुल अपर्याप्त तरीके से भी हो सकती हैं। मुझे उसके साथ जिस भी तरह के विचित्र अनुभव हुए, मैंने उनको बताने का भरसक प्रयास किया है। और स्टडी इन स्कारलेट के मामले में हम कैसे पहले पहल साथ मिले और फिर नेवल ट्रीटी तक उसमें उसके दखल तक साथ रहे। ये एक ऐसा दखल था जिसका असर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय जटिलता को बचाने के लिए था, मेरी कोशिश इसे रोक देने और इस घटना पर कुछ भी न कहने की थी, क्योंकि इसने मेरे जीवन में एक खालीपन सा ला दिया था और जिसे भरने में 2 वर्षों का समय भी कुछ ना कर सका। मेरे हाथों के साथ एक तरह की जबरदस्ती की जा रही थी। क्योंकि हाल ही के पत्रों में कर्नल जेम्स मॉरियार्टी ने अपने भाई की स्मृति के बारे में लिखा था, और इसीलिए मेरे सामने इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था कि लोगों के सामने वो तथ्य लाए जाएं जो वाकई घटित हुए थे। केवल मैं ही इस मामले की पूरी सच्चाई जानता था, और मुझे यकीन भी था कि अब वो समय आ चुका है जबकि इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक मुझे पता है, अखबारों में ये सिर्फ 3 ही बार छपा है, 6 मई 1891 जर्नल डी जिनेवा, 7 मई को राइटर्स डिस्पैच, और अब वे हाल ही के ही पत्र हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पहली और दूसरी खबर में तो ये बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में थे, और अंतिम वाली में, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा, तथ्यों को पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था। प्रोफेसर मॉरियार्टी और मिस्टर शर्लॉक होम्स के बीच पहली बार जो भी घटित हुआ, उन्हें बताने के लिए ये सब मेरे पास मौजूद हैं। मुझे याद है कि मेरी शादी के बाद और मेरी निजी चिकित्सा सेवा की शुरुआत के समय ही मेरे और होम्स के बीच अति घनिष्ठ संबंधों में कुछ हद तक एक बदलाव सा आ गया था। कभी कभी जब उसे अपने छानबीन में मेरी जरूरत होती थी, तभी वो मेरे पास आया करता था, पर ऐसे अवसर धीरे धीरे कम होते चले गए, और सन 1890 तक केवल 3 ही ऐसे मामले थे जिनका मैं संग्रह कर सका। उस साल के जाड़े के दिनों में और सन 1891 की वसंत ऋतु की शुरुआत में ही मैंने अखबारों में पढ़ा था कि उसे फ्रांस की सरकार ने किसी महत्वपूर्ण मामले में अपने साथ लगा रखा है, और इसी बीच होम्स के 2 पत्र मुझे नाबोन और नाइम्स से आए थे। इन पत्रों से मुझे पता चला कि वहां उसे कुछ दिन अधिक ठहरना पड़ सकता है। 24 अप्रैल को जब मैंने उसे अपने परामर्श कक्ष में आते हुए देखा, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि वो पहले की तुलना में थोड़ा पीला और दुबला हो गया था। मेरे शब्दों की बजाय मेरे देखने के तरीके का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहा और हाल ही तक बहुत ही ज्यादा तनाव में भी रहा। क्या तुम अपने इन दरवाजों को बंद कर दोगे? अब मेरे कमरे में रोशनी टेबल पर रखे केवल उसी लैंप से आ रही थी जिससे मैं पढ़ा करता था। होम्स दीवार के किनारे से होते हुए दरवाजों के पास पहुंच गया और फिर उन्हें सावधानी से बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या तुम किसी से डर रहे हो होम्स? हाँ, मैं डर रहा हूं। किससे? एयरगन से। इससे तुम्हारा क्या मतलब है होम्स? मेरे ख्याल से वॉटसन, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक घबराने वाला आदमी नहीं हूं, पर जब खतरा बिल्कुल नजदीक हो तब उसे न समझना साहस के बजाय बेवकूफी होती है। क्या मैं तुम्हें एक माचिस के लिए तकलीफ दे सकता हूं? उसने सिगरेट का कश ऐसे खींचा जैसे कि उसे बहुत आराम मिला हो। वो बोला, तुम्हें इतनी देर में बुलाने के लिए माफी चाहता हूं, और मैं तुमसे एक बार फिर दिल से माफी मांगता हूं कि तुम मुझे अपने पीछे वाले बागीचे की दीवार फांदकर आने की और जाने की अनुमति दोगे। मैंने पूछा, पर इनका क्या मतलब है? उसने अपना हाथ बाहर निकाला और लैंप की रोशनी में मैंने देखा कि उसकी उंगलियों की दो गांठें छिली हुई हैं और उनसे खून बह रहा है। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये अभी भी काफी मजबूत है। हाँ, क्या मिसेज वॉटसन अंदर हैं?
वो किसी से मिलने बाहर गई है।
तो तुम अकेले हो?
हाँ बिल्कुल।
तब तुम्हारे लिए मेरा ये प्रस्ताव कि तुम एक सप्ताह के लिए मेरे साथ महाद्वीप चलो।
हाँ,
कहाँ?
महाद्वीप?
कहीं भी, मेरे लिए तो सभी जगहें एक जैसी हैं।
इन सब बातों से मुझे कुछ विचित्र सा लग रहा था।
बिना उद्देश्य छुट्टी मनाना होम्स का स्वभाव नहीं है। उसका पीला और थका मांदा चेहरा मुझे बता रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा तनाव में था। उसने मेरी आंखों में वो प्रश्न देखे और फिर अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़कर और कोहनी और घुटनों को टिकाते हुए सारी बात मुझे बताई। वो बोला,
तुमने प्रोफेसर मोरियार्टी के बारे में नहीं सुना है?
नहीं, कभी भी नहीं। वो चीखता हुआ सा बोला, यही तो उसकी चालाकी और आश्चर्यजनक बात है वॉटसन। इस आदमी ने लंदन को बर्बाद कर रखा है और किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना है। अब ये तो वही चीज है जिसने उसे अपराध के रिकॉर्ड के शिखर पर पहुंचा दिया है। वॉटसन, मैं तुमसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक बात कर रहा हूं। यदि मैं इस आदमी को हरा दूं या समाज को इससे आजाद करवा दूं, तो मुझे लगेगा कि मेरा पेशा बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है और मुझे जीवन की शांति मिल जाएगी। मेरे लिए स्कैंडिनेविया के शाही परिवार और फ्रेंच रिपब्लिक में जो मेरी सहायता होती रही है, उसके बीच में मुझे इन सब चीज़ों ने ऐसी स्थिति में ला दिया था कि मैं बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जारी रख सकता था। जो लोग मेरे लिए अनुकूल थे, जो चीज़ें मेरे लिए अनुकूल थीं, मैं उन सारी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। पर वॉटसन, मुझे चैन नहीं था, क्योंकि जब भी मैं सोचता था कि प्रोफेसर मोरियार्टी जैसा आदमी लंदन की सड़कों पर बिना चुनौती के ही घूम रहा है, तब मैं अपनी कुर्सी पर चैन से नहीं बैठ पाता था। अरे, पर उसने ऐसा क्या कर दिया? उसका करियर असाधारण है, असाधारण। उसकी पैदाइश अच्छी जगह, पढ़ाई लिखाई भली प्रकार से हुई थी। प्रकृति ने उसे विलक्षण मैथमेटिशियन की प्रतिभा से नवाजा था। 21 साल की उम्र में ही उसने बायनोमियल सिद्धांत पर एक शोध प्रबंध लिखा था, जिसे यूरोप में काफी लोकप्रियता मिली। इसी के बल पर उसने हमारे विश्वविद्यालय में गणित के क्षेत्र में अपनी जगह भी बना ली थी और उसके सामने एक शानदार करियर भी था। किंतु इस व्यक्ति में आनुवांशिक रूप से कुछ बुरी प्रवृत्तियां थीं। उसके खून में अपराध की प्रवृत्तियां दौड़ती थीं, जो कि कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गईं और उसकी विलक्षण मानसिक शक्तियों के द्वारा कई गुना खतरनाक हो गई। विश्वविद्यालय परिसर में उसके खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं, जिसकी वजह से उसे वहां से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया। वहीं से वो लंदन आ गया और यहां उसने सेना के सवारी डिब्बे बनाने का काम शुरू कर दिया। दुनिया उसके बारे में केवल इतना ही जानती है, परंतु मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, वो मैंने खुद ही पता किया है। वॉटसन, जैसा कि तुम्हें पता ही है, लंदन की सबसे बड़ी अपराधियों की दुनिया के बारे में अन्य कोई उतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना कि मैं जानता हूं। कई सालों से मैं अपराधियों के पीछे की शक्ति के बारे में जानने को उत्सुक रहा हूं।
इसमें कोई ऐसी संगठित शक्ति है जो हमेशा कानून के रास्ते में खड़ी हो जाती है और गलत काम करने वालों की ढाल बनती है। कई तरह के मामलों जैसे धोखाधड़ी, लूट और हत्या आदि में मैंने बार बार इस ताकत की मौजूदगी को महसूस किया है। और उन बहुत से बिना सुलझे अपराधों में जिनमें मेरा परामर्श भी नहीं लिया गया था, मैंने इनके काम को भी जाना है। कई वर्षों से मेरी कोशिश उस पर्दे को उठाने की रही है जिसने इसे ढक रखा था, और अंत में वो समय आ ही गया जब मैंने वो सूत्र पकड़कर उसका पीछा किया। जब तक कि वो मुझे उन हजारों मक्कार घुमावदार रास्तों से होता हुआ उस नामी भूतपूर्व गणित के प्रोफेसर मोरियार्टी तक लेकर नहीं गया। वॉटसन, वो अपराध का नेपोलियन है। वो इस बड़े शहर के आधे गलत कामों और करीब सभी बिना सुलझे अपराधों का संगठन करता है। वो बहुत ही बुद्धिमान, दार्शनिक और अद्भुत सोच वाला व्यक्ति है। उसके पास अव्वल दर्जे का दिमाग है। वो एक मकड़े की तरह जाल के बीच में एकदम स्थिर होकर बैठता है। उस जाले में हजारों तार होते हैं, पर वो उनके हर कंपन को अच्छी तरह पहचानता है। वो ऐसे काम स्वयं बहुत ही कम करता है, वो केवल योजनाएं बनाता है। उसके अनेक एजेंट हैं और जो बहुत ही अच्छे ढंग से संगठित हैं। यदि कोई अपराध किया जाना है या एक कागज तक गायब करना है, गोली चलानी है, आदमी को गायब करना है, तब प्रोफेसर को सिर्फ कहा जाता है और सारा मामला तय हो जाता है, फिर इसे पूरा किया जाता है। वो एजेंट पकड़ा भी जा सकता है। इस स्थिति में उसके बचाव या उसकी जमानत के लिए धन का इंतजाम हो जाता है, पर उस एजेंट का इस्तेमाल करने वाली केंद्रीय ताकत को कभी नहीं पकड़ा जाता, उस पर संदेह भी नहीं होता है। वॉटसन, यही वो संगठन है जिसका मैंने पता लगाया है और जिसको तोड़ने और पर्दाफाश करने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रोफेसर ने इतनी चालाकी से अपनी सुरक्षा के उपाय कर रखे थे कि मैं जो भी करूं, ऐसे सबूतों का मिलना असंभव लगता था जिससे उसे कानून के कटघरे में लाया जा सके। वॉटसन, तुम्हें मेरी ताकत का पता है, फिर भी मैं 3 महीने बाद ये मानने के लिए मजबूर हो गया हूं कि मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंदी मिल गया है जो कि बुद्धिमानी में मेरे ही बराबर है, एकदम बराबर। उसकी काबिलियत की प्रशंसा में उसके अपराधों के प्रति मेरा डर गायब हो गया था। अंत में उसने एक यात्रा की, केवल एक छोटी सी यात्रा, मगर जितनी वो कर सकता था उससे ये बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैं उसके बहुत ही पास तक पहुंच चुका था। मेरे पास मौका था और उसी जगह से मैंने चारों तरफ अपना जाल बुनना शुरू कर दिया, और ये तब तक जारी रहा जब तक कि वो इसके काफी नजदीक नहीं आ गया। 3 दिनों में ही, यानी अगले सोमवार को ये मामला बिल्कुल पक जाएगा और प्रोफेसर अपने गिरोह के सभी प्रमुख साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में होगा। तब इस सदी का सबसे बड़ा फौजदारी का मुकदमा सामने आएगा जिसमें 40 से अधिक रहस्यों का पर्दाफाश होगा। किंतु तुम तो जानते ही हो, यदि हम समय से पहले कुछ करेंगे तो उन सभी की रस्सी अंतिम समय में हमारे हाथ से छूट सकती है। वॉटसन, यदि मैं इस काम को प्रोफेसर मोरियार्टी की जानकारी के बिना ही कर सकता तो ये बहुत अच्छा होता, पर वो बहुत मकार आदमी है। मैंने उसके चारों तरफ जो भी मेहनत की है, उसने हर कदम पर निगाह रखी थी। अक्सर ही जब मैं उसे रोकने वाला होता था तभी वो बार बार बचकर निकल जाता था। ओह मेरे दोस्त वॉटसन, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि इस शांत प्रतियोगिता को विस्तार से लिखा जा सकता तब प्रहार और बचाव के रूप में सुराग सानी के इतिहास में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता। मैं ऐसे स्तर पर पहले कभी नहीं पहुंचा था और कभी भी मैं अपने विरोधी के द्वारा इतना परेशान नहीं किया जा पाया। उसने मुझे चोट पहुंचाई और फिर भी मैंने उसे कम आंका। आज सुबह उसने अंतिम कदम उठाया और जबकि इस काम को पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ इस मामले पर सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और प्रोफेसर मोरियार्टी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वॉटसन, मुझे किसी भी तरह की घबराहट नहीं थी, पर मैं ये मानता हूं कि जब मैं उस आदमी को देख रहा था जो कि मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, आज वो मेरी चौखट पर खड़ा था। उसकी मौजूदगी मेरे लिए काफी परिचित सी थी। वो बहुत ही लंबा और दुबला सा था, उसका सफेद माथा आगे की ओर उभरा हुआ और आंखें धसी हुई थी। उसकी शक्ल बिना दाढ़ी मूंछ की पीली और एशियाई लोगों जैसी थी। उसका चेहरा मोहरा एक प्रोफेसर की तरह लगता था। बहुत ही ज्यादा पढ़ने की वजह से उसके कंधे कुछ गोल से हो गए थे और चेहरा आगे की तरफ निकल गया था। वो अपना सिर दाएं बाएं सांप की तरह हिला रहा था। उसने अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से मुझे बहुत ही जिज्ञासा से देखा और बोला, मैंने जितनी उम्मीद की थी तुम उससे कम दिखते हो। आदमी का अपने ड्रेसिंग गाउन में एक भारी पिस्तौल पर उंगली रखना खतरनाक आदत है। वास्तविकता यह थी कि उसके घुसते ही मैंने तुरंत उसके ऊपर एक खतरा भांप लिया था। उसके बचाव का सिर्फ यही एक तरीका था कि मेरी जबान बंद हो जाती। तभी तुरंत ही मैंने ड्रॉर से एक रिवॉल्वर निकाली और अपनी जेब में रख ली और इसे कपड़े के भीतर ही उसके लिए तैयार कर रखा था। उसके इस तरह से कहने पर मैंने वो हथियार बाहर निकाला और मेज पर रख दिया। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी पलकें झपकाई। मैं इस बात से बहुत खुश था कि वो मेरे सामने मौजूद है। उसने कहा, तुम असल में मुझे नहीं जानते। मैंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूं। प्लीज सिट डाउन। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको 5 मिनट दे सकता हूं। उसने कहा, मुझे जो कुछ भी कहना है वो पहले ही तुम्हारे दिमाग में जा चुका है। तो मैंने जवाब दिया कि तब मुमकिन है कि मेरा जवाब भी तुम्हारे पास होगा। उसने कहा कि तुम बहुत तेज हो। मैंने कहा, बिल्कुल। उसने अपना हाथ अपनी जेब में जैसे ही डाला, मैंने मेज से पिस्तौल उठा ली। पर उसने केवल एक छोटी सी नोटबुक निकाली जिसमें उसने कुछ तारीखें लिख रखी थी। वो बोला, तुम 4 जनवरी को मेरे रास्ते का रोड़ा बने थे। 23 तारीख को तुमने मेरे लिए परेशानी खड़ी की थी और मार्च के अंत में मेरी योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। अब अप्रैल की समाप्ति पर मुझे तुम्हारे लगातार उत्पीड़न से अपनी आजादी खो देने का डर है। ये स्थिति अब बिल्कुल नामुमकिन सी हो गई है। मैंने पूछा, क्या आपको और कोई मशवरा देना है? उसने अपना सिर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, मिस्टर होम्स, तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। सचमुच छोड़ देना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, सोमवार के बाद। वो बोला, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी काबिलियत का व्यक्ति इस मामले का एक परिणाम जरूर देखेगा, इसलिए तुम अपना हाथ वापस खींच लो। तुमने अपना काम इस ढंग से किया है कि हमारे पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है। तुमने इस मामले को जिस ढंग से जकड़ा है, इसे देखना मेरे लिए एक बुद्धिमानी वाला आनंद है। मैं कहता हूं कि इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर होना मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी। होम्स, तुम मुस्कुरा रहे हो, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं। मैंने कहा, खतरा मेरे काम का हिस्सा है। वो बोला, यह खतरा नहीं है, ये कभी ना रुकने वाली बर्बादी है। तुम एक व्यक्ति के नहीं बल्कि एक मजबूत संगठन के खिलाफ खड़े हो। तुम अपनी सारी चतुराई के साथ भी इसे समझने में इतने असमर्थ हो। मिस्टर होम्स, तुम्हें इस चीज को साफ साफ समझ लेना चाहिए, नहीं तो तुम कुचल दिए जाओगे। मैंने उठते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस बातचीत की मौज में मैं अपने कुछ जरूरी काम अनदेखे कर रहा हूं जो कहीं मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो भी उठा और शांति से मुझे देखते हुए उदासी से उसने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, बहुत दुख की बात है कि मैंने जो कहा तुमने उसे सुना नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूं। तुम सोमवार से पहले कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर होम्स, ये मेरे और तुम्हारे बीच का द्वंद्व युद्ध है। तुम्हें उम्मीद है कि तुम मुझे कटघरे में खड़ा कर दोगे। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं कभी कटघरे में खड़ा नहीं होऊंगा। तुम मुझे हराने की हिम्मत रखते हो। मैं कहता हूं कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। अगर तुम मुझे बर्बाद करने की सोच रहे हो तो निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हें उतना ही बर्बाद कर दूंगा। मैंने कहा, मिस्टर मोरियार्टी, आप मुझे काफी बधाइयां दे चुके, अब मुझे भी इसके एवज में एक तो दे लेने दीजिए। अगर मैं पहले वाली संभावना के लिए सुनिश्चित कर दिया गया हूं, तब भी लोगों के हित में बाद वाली संभावना को खुशी से स्वीकार कर लूंगा। उसने घुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक का तो वादा कर सकता हूं पर दूसरी का नहीं। इतना कहकर वो मुझे देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। प्रोफेसर मोरियार्टी के साथ यही मेरा साक्षात्कार था। मैं ये जानता हूं कि इसने मेरे दिमाग पर एक बुरा असर डाला है। उसके उस छोटे से भाषण ने गंभीरता की वजह से मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी, जो कि केवल एक गुंडे से पैदा नहीं होती। तुम ये कह सकते हो कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस से सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? इसका कारण यह था और मुझे पक्का यकीन था कि उसके एजेंट ही मुझ पर हमला करेंगे, और अगर ऐसा होता तो मेरे पास इसके बेहद पक्के सबूत थे।
तो क्या तुम पर पहले भी हमला हो चुका है?
आह डियर वॉटसन, प्रोफेसर मोरियार्टी वो आदमी नहीं है जो अपने पैरों के नीचे घास उगने दे। मैं दोपहर में किसी काम से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गया था। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां एक रास्ता बैटिंग स्ट्रीट को जाता है, तभी एक दो घोड़ों वाली गाड़ी तेजी से सनसनाती हुई मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी। मैं तुरंत ही उछलकर फुटपाथ पर हो गया और मैंने खुद को इससे बचा लिया। ये सब कुछ कुछ ही पलों में घटित हो गया। वो गाड़ी मेरीबोन लेन की तरफ गई और फिर तुरंत ही गायब हो गई। वॉटसन, इसके बाद मैं सड़क के किनारे पर बस खड़ा रह गया, और जैसे ही मैं चला कि तभी किसी मकान की छत से एक ईंट नीचे की तरफ आई और मेरे पैरों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। मैंने पुलिस को बताया और उस जगह की छानबीन करवाई, पर वहां कुछ पत्थर और ईंट छत की मरम्मत के लिए पहले से ही रख दिए गए थे। मुझे विश्वास दिलाया गया कि शायद उनमें से कोई ईंट हवा से गिर पड़ी होगी। ये जरूर है कि मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता था, पर मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाया। इसके बाद मैं घोड़ा गाड़ी से अपने भाई के पास फॉल मॉल चला गया और वहां मैंने अपना दिन बिताया। अब मैं तुम्हारे पास आया हूं, और आते समय रास्ते में एक गुंडे ने मुझ पर एक भारी भरकम चीज से हमला भी किया था। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। किंतु मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उस आदमी जिसके सामने के दांत से मेरी उंगलियों की गांठें छिल गई थीं, और उसका वो सेवानिवृत्त गणित का शिक्षक जो कि संभवतः 10 मील दूर ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न हल कर रहा होगा, उसके बीच में कोई संबंध नहीं पाया जा सकेगा। वॉटसन, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम्हारे कमरे में घुसते ही मेरा पहला काम तुम्हारे दरवाजों को बंद करना था, और सामने वाले दरवाजे की बजाय कम संदेह वाली जगह से बाहर निकलने के बारे में तुमसे पूछे जाने के लिए मैं विवश था। मैंने अक्सर अपने साथी के साहस की प्रशंसा की थी, परंतु इस बार जितना कुछ भी उसने मुझे बताया, अगर उन्हें आपस में जोड़ें, तो आज का दिन बड़ा भयानक सा लग रहा था। मैंने कहा, तुम रात को कहां जाओगे होम्स? नहीं मेरे दोस्त, नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनना चाहता। मेरे पास मेरी योजनाएं हैं और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक सब कुछ तय हो चुका है, और जहां तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, इसमें उन्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं होगी। हालांकि दोष साबित करने के लिए मेरी मौजूदगी जरूरी है, इसीलिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊं। इससे पुलिस को अपना काम करने में आसानी होगी, और मेरे लिए खुशी की बात होगी कि तुम मेरे साथ कोई महाद्वीप किसी आइलैंड पर चलो। मैंने कहा, मेरी प्रैक्टिस भी इस समय धीरे चल रही है, और मेरा पड़ोसी भी काफी सहयोग करने वाला आदमी है। मुझे तुम्हारे साथ चलने में खुशी होगी। ठीक है, तब कल सुबह शुरू करते हैं। सुनो, बहुत जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे निर्देश हैं माय डियर वॉटसन। मेरी तुमसे विनती है कि तुम उन सब का पालन करोगे, क्योंकि तुम यूरोप के सबसे शक्तिशाली और चालाक अपराधी संगठन के खिलाफ मेरे साथ दोनों हाथों वाला खेल खेल रहे हो। अब सुनो, तुम अपना जो भी सामान ले जाने वाले हो, उसे तुम आज रात बिना पता लिखे ही अपने एक विश्वसनीय आदमी के साथ विक्टोरिया भेज दोगे। सुबह तुम अपने आदमी को ये कहते हुए एक घोड़ा गाड़ी लेने के लिए भेजोगे कि वो वहां मौजूद पहली और दूसरी वाली गाड़ी को नहीं लेगा। समझे? पहली और दूसरी वाली गाड़ी को नहीं लेगा। इस घोड़ा गाड़ी से तुम एक लॉथर एक्रेट के स्टैंड की ओर चलोगे और कोचवान को कागज के टुकड़े पर पता लिख कर दे दोगे। साथ ही उसे यह भी बता देना कि वो इसे कहीं फेंके नहीं। अपना किराया तैयार रखना, और जैसे ही तुम्हारी गाड़ी रुके, तुम एक्रेड से भागकर दूसरी तरफ ठीक 9:15 बजे पहुंच जाना। वहां तुम्हें एक घोड़े वाली छोटी गाड़ी इंतजार करती मिलेगी, जिसे एक काली शॉल ओढ़े हुए आदमी चला रहा होगा। तुम इसमें घुस जाना और कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस के लिए ठीक समय पर विक्टोरिया पहुंच जाना।
मैं वहां पर तुमसे कहां मिलूंगा?
ठीक स्टेशन पर, सामने वाला फर्स्ट क्लास का दूसरा डिब्बा हमारे लिए रिजर्व्ड होगा। वो बोगी ही हमारी मुलाकात की जगह है।
ऑलराइट होम्स।
अब होम्स से शाम को रुकने के लिए पूछना बेकार था। उसका ये सोचना अब स्पष्ट हो चुका था कि वो मेरे लिए परेशानी बन सकता था और इसी उद्देश्य से वो चले जाने के लिए बाध्य था। कल की अपनी योजना के अनुसार वो जल्दी जल्दी कुछ शब्द बुदबुदाते हुए मेरे साथ बागीचे में आया और फिर दीवार फांद कर दूसरी तरफ कूद गया, जो कि सीधा मॉर्टिमर स्ट्रीट की तरफ जाती थी। उसने घोड़ा गाड़ी के लिए एक सीटी की आवाज़ निकाली और फिर उसी से मैंने उसे जाते हुए सुना। सुबह मैंने होम्स के निर्देशों का पालन किया। एक घोड़ा गाड़ी इतनी सावधानी से ये बचाते हुए ली गई कि ये हमारे लिए ही तैयार की गई थी। नाश्ते के बाद मैं तुरंत ही लोअर एक्रेट की तरफ चल दिया, जहां से मैं अपनी पूरी तेजी से भागा। अब मेरे सामने एक छोटी सी एक घोड़े वाली गाड़ी खड़ी थी, जिसके कोचवान ने काली शॉल लपेट रखी थी। जैसे ही मैं इसमें बैठा, उसने अपना चाबुक घोड़े पर लहराया और तेजी से विक्टोरिया स्टेशन की तरफ भागा। मेरे उतरते ही उसने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और बिना मेरी तरफ देखे ही तुरंत तेजी से वापस चल दिया। ये सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। मेरा सामान मेरा इंतजार कर रहा था और होम्स की बताई जगह को खोजने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ट्रेन में केवल यही एक जगह थी जिस पर रिजर्व्ड लिखा हुआ था। अब मेरी केवल एक ही बेचैनी थी कि होम्स वहां नहीं था। स्टेशन की घड़ी बता रही थी कि हमारी यात्रा की शुरुआत में सिर्फ 7 मिनट बचे थे। यात्रियों के समूहों और विदा करने वालों के बीच मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ था क्योंकि मुझे उसमें अपने साथी का कोई निशान नहीं मिला। मैंने अपना कुछ समय इटली के एक बुजुर्ग पादरी की सहायता करने में बिताया, जो कि कुली को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका सामान पेरिस के लिए बुक होना था। फिर एक बार चारों तरफ देखते हुए मैं वापस अपनी बोगी की तरफ लौट आया, जहां मुझे वही कुली मिला और उसने टिकट के बदले वही मरियल से पादरी को साथी के रूप में मुझे दे दिया। पादरी को ये बताना बेकार था कि वो जिस जगह बैठे हैं वो रिजर्व्ड है, क्योंकि मेरा इटालियन का भाषा ज्ञान उसकी अंग्रेजी से भी कम था। इसीलिए मैंने अपने कंधे अस्वीकृति में उचका दिए और बेचैनी से अपने साथी को इधर उधर देखने लगा। जैसे ही मैंने सोचा कि उसकी गैर मौजूदगी का मतलब ये हो सकता है कि उस रात उस पर कोई घातक हमला हुआ होगा, डर की एक सिहरन मुझ में दौड़ गई। ट्रेन के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे और जब सीटी बजी तभी एक आवाज़ आई, ओह डियर वॉटसन, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग तक कहने की जहमत नहीं उठाई। मैं आश्चर्यचकित होकर मुड़ा। उस बुजुर्ग पादरी ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। अगले ही पल उसकी झुर्रियाँ सीधी हो गईं, नाक ठुड्डी से हट गई और नीचे के होंठ का आगे की ओर निकलना और उसके मुंह का बुदबुदाना खत्म हो गया। उसकी उदास आंखों में एक चमक आ गई और उसका झुका हुआ शरीर तन गया। अब वो पुराना ढांचा गायब हो चुका था और उसकी जगह होम्स ने ले ली थी। मैं चीख पड़ा, ओह गॉड, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। वो फुसफुसाते हुए बोला, देखो अभी भी मेरा सुरक्षित रहना ज़रूरी है। मुझे पता था कि वो मेरा पीछा करेंगे। ओह, वहाँ मोरियार्टी खुद भी मौजूद है। जैसे ही होम्स ने इतना कहा ट्रेन चल पड़ी। पीछे की तरफ जब मैंने देखा तो वहाँ एक लंबा आदमी भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था और अपने हाथ इस तरह से हिला रहा था कि जैसे वो ट्रेन रोकना चाहता हो। अब बहुत देर हो चुकी थी, ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली थी और थोड़ी ही देर में स्टेशन को पीछे छोड़ दिया था। होम्स ने हंसते हुए कहा, अपने सारे सुरक्षा के उपायों के चलते हम बाल बाल बचकर निकल आए। वो उठ खड़ा हुआ और खुद को छुपाने वाले अपने उस काले चोगे और हैट को उतारकर हैंडबैग में रख दिया। वॉटसन, क्या तुमने आज सुबह का अखबार पढ़ा है? नहीं। तब तुम्हें बेकर स्ट्रीट के बारे में भी नहीं पता होगा। बेकर स्ट्रीट? उन्होंने पिछली रात को हमारे कमरों में आग लगा दी थी। इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। होम्स, ये बर्दाश्त के बाहर है। जब उनका वो आदमी गिरफ्तार हुआ था ना, जिसने मुझ पर चोट की थी, तभी वे मुझे ढूंढने में भटक गए थे। इसीलिए वे अंदाजा नहीं लगा सके कि मैं वापस अपने कमरे में आ गया हूं। उन्होंने तुम पर भी निगाह रखी थी और इसीलिए मॉरियार्टी विक्टोरिया तक पहुंच गया था। तुमने आने में कोई गलती तो नहीं की थी? मैंने तो ठीक वही किया जो तुमने कहा था। क्या तुम्हें वो घोड़ा गाड़ी मिली थी? हाँ, वो मेरा इंतजार कर रही थी। क्या तुमने कोचवान को पहचान लिया था? नहीं, वो मेरा भाई माइक्रॉफ्ट था। ऐसे मामलों में बिना तुमको बताए, बिना स्वार्थ के ही उससे लाभ मिल जाता है। ऐसे नाजुक मौकों पर किसी भाड़े के आदमी को अपने विश्वास में नहीं ले सकते। परंतु अब हमें मॉरियार्टी के लिए जो करना है उसकी योजना बनानी है। ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक नाव इसका पीछा भी करेगी, तो मुझे लगता है हम इससे बहुत ही सुरक्षित ढंग से बच निकले हैं। माय डियर वॉटसन, तुमने मेरी बात का सही अंदाजा नहीं लगाया है कि ये आदमी मेरे ही दिमाग के स्तर का है। तुम सोच नहीं सकते हो कि अगर मैं पीछा करने वाला होता तो क्या मैं खुद को इतने हल्के से अवरोध से रोक लेता। तब तुम उसके बारे में इतना कम क्यों सोचते हो? तो क्या करेगा वो? मुझे क्या करना चाहिए? तुम क्या करोगे? दूसरी गाड़ी बदल लो, पर वो लेट हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेन कैंटरबरी पर रुकती है और वहां बोट के आने में कम से कम 15 मिनट की देरी होती है। वो हमें पकड़ लेगा। कोई भी सोचेगा कि हम अपराधी हैं। उसके आने पर उसे गिरफ्तार तो हो जाने दो। ये हमारा 3 महीने का काम बर्बाद कर देगा। हमें बड़ी मछली पकड़नी है, पर छोटी मछलियां जाल से बाहर बच जाएंगी। सोमवार को हमें वे सब मिल जाएंगी, इसीलिए तो गिरफ्तार होना ठीक नहीं है। हाँ, तो फिर क्या करें? हम कैंटरबरी पर बाहर आ जाएंगे और तब फिर हम नेवतेन से डीपी तक की एक लंबी यात्रा करेंगे। मुझे जो चाहिए मॉरियार्टी वही करेगा। वो पेरिस जाएगा और हमारे सामान को पहचान कर वहां डिपो में हमारा 2 दिनों तक इंतजार करेगा। इसी बीच हम कपड़े के 2 बैग ले लेंगे और अपने देश के निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हुए उसी के साथ यात्रा करेंगे। हम लग्जमबर्ग और बैसले होते हुए स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। कैंटरबरी पर हम केवल इसीलिए उतर गए कि हमें न्यू हेवन के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए वहां 1 घंटा इंतजार करना था। मैं अभी भी अपने सामान के साथ जाते हुए वैन को दुखी मन से देख रहा था, क्योंकि इसमें मेरे कपड़े थे। जबकि होम्स ने मेरी बाहें खींची और पटरी की ओर इशारा किया। उसने कहा, तुम उसे पहले ही देख चुके हो। कैंटिश के जंगलों में काफी दूर धुएं की एक पतली सी रेखा ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ रही थी। एक ही मिनट बाद एक गाड़ी का डिब्बा और इंजन दूर के मोड़ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि स्टेशन की ओर ही आ रहा था। जैसे ही यह गरजता हुआ अपनी गर्म हवा हमारे चेहरे पर छोड़ता हमारे सामने से गुजरा। स्टेशन पर पड़े माल के ढेर के पीछे हो जाने का भी हमारे पास समय नहीं था। जब हम उस गाड़ी के डिब्बे को पहाड़ी पर जाते हुए देख रहे थे, तभी होम्स ने कहा, वो वहां जा रहा है। हमारे साथी की बुद्धिमानी की भी सीमाएं हैं। ये अप्रत्याशित हो सकता है कि मैं जो भी परिणाम निकालूं और उस पर काम करूं, उसका उन्हें पहले ही पता चल जाता है। उसने क्या किया होगा? क्या वो हमसे आगे निकल गया होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुझ पर मेरी हत्या करने के लिए हमला किया था। यही एक खेल है जिसे हम दोनों खेल सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम पहले ही यहां लंच कर लें या न्यू हेवन पहुंचकर खाना खाने तक भूखे रहें। हम उस रात ब्रसल्स की तरफ चल दिए और हमने वहां 2 दिन बिताए। तीसरे दिन हम स्ट्रासबर्ग पहुंच गए। सोमवार की सुबह होम्स ने लंदन की पुलिस को टेलीग्राम किया, जिसका जवाब हमें शाम को होटल में मिला। होम्स ने इसे खोला और फिर बुरा समूह बनाकर फेंक दिया। फिर एक कराहती आवाज में कहा, मुझे लगता है वो बच गया। ओफो, मॉरियार्टी? सिवाय उसके उन्होंने पूरा गिरोह पकड़ लिया, पर वो बचकर निकल गया वॉटसन। वाकई जब मैंने देश छोड़ा तब उससे कोई बच नहीं सकता था, पर मुझे लगा कि मैंने उसे पुलिस के हाथों में सौंप दिया है। वॉटसन, मेरे ख्याल से तुम्हें वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए खतरनाक साथी बन चुका हूं। इस आदमी का पेशा खत्म हो चुका है। अगर वो लंदन वापस लौटता है तो वहां कुछ भी नहीं है। जहां तक मैं उसके स्वभाव को जानता हूं, वो अपनी पूरी ताकत मुझसे बदला लेने में लगा देगा। उसने मेरे साथ अपनी एक छोटी सी मुलाकात में कहा था और मैं जानता हूं कि वो वैसा ही करेगा। मैं वाकई तुम्हें परामर्श देता हूं कि तुम अपनी प्रैक्टिस में वापस चले जाओ। ये किसी व्यक्ति के लिए एक अनुरोध जैसा ही था, जो कि उसका एक पुराना सहयोगी होने के साथ एक पुराना साथी भी था। हम स्ट्रासबर्ग में इस विषय पर आधे घंटे तक बहस करते रहे और उसी रात हमने अपनी यात्रा जिनेवा के लिए शुरू कर दी। एक हफ्ते तक हम रॉन की मनोहर घाटी में घूमते रहे और फिर ल्यूक होते हुए जेमिनी दर्रे पहुंच गए, जो कि बर्फ से ढका हुआ था। इसके बाद हम इंटरलेकन से मेरिजन चले गए। ये एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा थी, नीचे धरती पर हरियाला वसंत और ऊपर सफेद बर्फ। लेकिन ये मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि एक पल के लिए भी होम्स उस काली छाया को नहीं भूल पाया था। घर की ही तरह उस अल्पाइन के गांव और एकांत वाले पहाड़ी दर्रों में भी मैं उसकी चौकन्नी आंखों और हर आने जाने वाले चेहरे पर उसकी तीक्ष्ण दृष्टि को देख रहा था। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि हम जहां भी जाएंगे हम खतरे से बाहर नहीं रहेंगे, जो कि हमारे पैरों के निशान का पीछा कर रहा है। मुझे याद है कि एक बार जब हम जेमिनी से होकर गुजर रहे थे और डाउबेंसी की सीमा पर ही थे, तभी ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर नीचे की ओर रुड़का और ठीक हमारे पीछे झील में आवाज करता हुआ गिर गया। एक झटके से होम्स किनारे टीले पर चढ़ गया और अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर देखने लगा। वहां कोई नहीं दिखा और हमारे गाइड ने हमें यकीन दिलाया कि इस मौसम में यहां पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं। होम्स ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उस आदमी की बात सुनकर मेरी तरफ देखकर एक ऐसे इंसान की तरह मुस्कुराया जो कि अपनी बात का असर देख रहा हो। अपने पूरे चौकन्नेपन के बावजूद वो हताश नहीं हुआ था, बल्कि मैंने पहले कभी उसको इतना उत्साह में देखा ही नहीं था। वो बार बार इसी बात पर आ जाता था कि उसे समाज को मोरियार्टी से आजाद करवाना है, तभी वो अपने पेशे को प्रसन्नतापूर्वक एक परिणाम पर पहुंचा पाएगा। मैं सोचता हूं वॉटसन, मैं अब ये कह सकता हूं कि मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया है। अगर मेरे संग्रह आज की रात बंद कर दिए जाएं, तब भी मैं उनका धैर्यपूर्वक अवलोकन कर सकता हूं। लंदन की हवा मेरे लिए बहुत ही मधुर है। हजारों मामले जिन पर मैंने काम किया, मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी गलत पक्ष के लिए किया हो। हाल ही में बजाय उन अधिक बनावटी मामलों को जिनके लिए हमारे समाज की बनावटी स्थिति जिम्मेदार है, मेरा झुकाव प्रकृति द्वारा पैदा की गई समस्याओं की ओर रहा है। वॉटसन, यूरोप के सबसे अधिक खतरनाक और सक्षम अपराधी को पकड़ने या उसके सफाई के द्वारा जब मैं अपने पेशे को सजाऊंगा ना, तब वो दिन तुम्हारे संस्मरणों की समाप्ति का दिन होगा। जो कुछ भी मेरे पास बताने के लिए बचेगा उसे मैं संक्षिप्त रूप में ठीक ठीक बता दूंगा। ये कोई विषय नहीं है जिसमें मैं बने रहना चाहता हूं। फिर भी मैं सचेत हूं कि विस्तार से बताने के साथ किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को न भूलने का कार्य मुझे सुपुर्द किया गया है। ये 3 मई थी और हम एक छोटे से गांव मेरिनजेन में पहुंचे, जहां हम इंग्लिशर हॉफ के पास रुके और फिर उसके बड़े भाई पीटर स्टेलियर के पास ठहराए गए। हमारा मकान मालिक एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। वो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता था। उसने लंदन के ग्रॉसवेनर होटल में 3 साल तक बैरे की नौकरी की थी। उसी की राय पर हम 4 तारीख की दोपहर में इस इरादे के साथ पहाड़ी को पार करने चल दिए कि हम रॉजन लुई की एक झोपड़ी में रात गुजारेंगे। हमें समझाया गया था कि रेजन बॉख के झरने को उन छोटे चक्करदार रास्तों से देखे बिना उसे पार ना करें, जो कि पहाड़ी से करीब आधे रास्ते पर था। ये वाकई बहुत ही डरावनी जगह थी। पिघली हुई बर्फ से जहां पर झरने बन रहे थे वो बहुत प्रबल थे, जो कि नीचे बहुत ही गहराई में गिर रहे थे। इसकी फुहारें जलते हुए घर के धुएं की तरह निकल रही थी। ये नदी बहुत ही भयानक रूप से उस खाई में गिर रही थी। इसके किनारे काली चमकीली चट्टानें थीं। दूधिया रंग की ये नदी आगे से संकरी होते हुए नीचे गहराई में गिर रही थी। तेजी से बहती हुई ये धारा ऊपर तक लबालब भरी हुई थी। दूर तक फैला हुआ वो हरे रंग का पानी नीचे गरज रहा था। फुहारों का वो मोटा पर्दा ऊपर की तरफ जैसे फुफकार रहा था।
इसकी लगातार और शांति प्रदान करने वाली हवा आदमी को एक खुमारी में ला दे। हम किनारे खड़े होकर नीचे पानी को देख रहे थे जो कि काली चट्टानों के बीच से होकर गुजर रहा था और उससे आती आवाजों को सुन रहे थे। झरने को पूरा और खूबसूरत तरह से देखने के लिए रास्ते को गोल आकार देकर बंद कर दिया गया था, पर यह अचानक ही खत्म हो जाता था और यात्री जिधर से आता उसे उधर की ही ओर वापस जाना पड़ता था। इसीलिए हमें भी मुड़कर जाना पड़ा कि तभी हमने देखा कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला एक युवक अपने हाथों में एक चिट्ठी लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है। इसमें उसी होटल का निशान बना हुआ था जिसे हमने अभी अभी छोड़ा था। मकान मालिक ने इस चिट्ठी पर मेरा नाम लिखा था। इससे पता चला कि हमारे होटल छोड़ने के कुछ ही मिनटों के बाद वहां एक अंग्रेज महिला आई थी। उसकी हालत जैसे फेफड़े में संक्रमण होता है ना, उससे बहुत खराब थी। वो डेवास प्लॉट्स पर छुट्टियां मनाने आई थी और अब अपने दोस्तों के पास ल्यूसरेन जा रही थी कि तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा मालूम पड़ता था कि वो कुछ ही घंटों की मेहमान है। यदि मैं वापस लौट जाता हूं तो एक अंग्रेज डॉक्टर का उसको देखना उसके लिए एक बड़ी दिलासा होगी। उस भले आदमी स्टेलियर ने मुझे उस चिट्ठी में यकीन दिलाया था कि वो मेरी इस तकलीफ के लिए मेरा आभारी रहेगा। चूंकि उस महिला ने स्विट्जरलैंड के किसी चिकित्सक के लिए मना कर दिया था, इसीलिए वो इसे अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी मान रहा था। ये अनुरोध इस तरह से था कि इसे मना नहीं किया जा सकता था। अपने देश की महिला जो कि अपरिचित भूमि पर मरने वाली थी, उसके लिए इस प्रार्थना को अस्वीकार करना असंभव था। हालांकि होम्स को छोड़कर जाते हुए मुझे झिझक हो रही थी, अंत में ये तय हुआ कि वो उस युवा संदेशवाहक को अपने पास रास्ता बताने के लिए और सहयोगी के रूप में रखेगा और मैं मेरिन जेन जाऊंगा। होम्स ने कहा कि वो कुछ समय झरने के पास बिताएगा और फिर धीमे धीमे पहाड़ी पर चढ़ते हुए रोजेन लुई पहुंचेगा, जहां शाम को मैं फिर उससे मिलूंगा। जैसे ही मैं कुछ दूर पहुंचा तो मैंने देखा कि होम्स की पीठ एक चट्टान के सहारे टिकी है और वो हाथ बांध कर नीचे झरने के पानी को देख रहा है। यही वो अंतिम दृश्य था जो मेरी तकदीर ने मुझे इस दुनिया में दिखाया था। जब मैं काफी नीचे उतर आया और मुड़कर देखा तब उसे वहां देख पाना असंभव था, परंतु मैं उस घुमावदार रास्ते को देख सकता था जो कि पहाड़ी से होकर उस तक जाता था। इसी पर एक आदमी, जहां तक मुझे याद है, काफी तेजी से जा रहा था। मैंने उसकी काली छाया की बाहरी रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट तरह से देखी थी। मैंने उसके जल्दी जल्दी चलने पर भी ध्यान दिया था, परंतु अपनी मंजिल पर जाने की जल्दी में वो मेरे दिमाग से हट गया। मेरिंजन पहुंचने में मुझे 1 घंटे से अधिक का समय लगा। वो बुजुर्ग स्टेलर अपने होटल के पोर्च पर खड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी आते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो अभी ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं होंगी। उसके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव था और उसकी भौहों के प्रदर्शन ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। उस चिट्ठी को जेब से बाहर निकालते हुए मैंने कहा, क्या ये चिट्ठी आपने लिखी है? क्या इस होटल में कोई अंग्रेज औरत बीमार है? वो जोर से बोला, बिल्कुल नहीं, मगर इस चिट्ठी पर मेरे होटल का निशान है। इसका मतलब है कि इसे उसी लंबे अंग्रेज आदमी ने लिखा होगा जो तुम लोगों के जाने के बाद आया था, उसने कहा। पर मैं उस होटल के मालिक की बात सुनने के लिए नहीं रुका। एक अजीब से भय के साथ मैं उस गांव की सड़क पर दौड़ पड़ा और उसी ओर भागा जिधर से मैं अभी अभी उतरा था। इसमें मुझे करीब 1 घंटा लग गया था। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद एक बार फिर से रेजनबॉख के झरने पर पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग गए। होम्स का सामान उसी चट्टान पर पड़ा हुआ था जहां मैंने उसे छोड़ा था, परंतु वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसको आवाज देकर पुकारना भी बेकार हो गया। छोटी छोटी पहाड़ियों से टकराकर आती मेरी आवाज की प्रतिध्वनि ही मेरा जवाब थी। उसके वहां पड़े सामान को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि वो रोजेन लुई नहीं पहुंचा, वो यहीं कहीं रुका होगा, जिसके एक ओर सीधी सपाट चढ़ाई और दूसरी ओर गहरी खाई थी। तभी उसके दुश्मन ने उसे पकड़ लिया होगा। वो स्विट्जरलैंड वाला युवक भी चला गया था। उसको शायद मोरियाटी ने कुछ पैसे दिए होंगे और उसके साथ 2 आदमी और थे। फिर क्या हुआ होगा? कौन हमें बताएगा कि क्या हुआ होगा?
अपने आप को संयत करने के लिए मैं एक या दो मिनट के लिए खड़ा रहा, क्योंकि मैं उन चीजों को देखकर थोड़ा भयभीत हो गया था। फिर मैंने होम्स के अपने तरीकों से सोचना शुरू किया और इस आपदा को समझने के लिए उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश की। ऐसा करना बहुत ही आसान था। अपनी बातचीत के दौरान हम उस रास्ते के अंतिम सिरे तक नहीं गए थे और वहां पड़ा हुआ उसका सामान यही बता रहा था कि हम वहीं खड़े थे। वहां की काली मिट्टी फुहारों की बौछार से नरम हो गई थी और इस पर अब एक चिड़िया के निशान बन सकते थे। जाते हुए पैरों के दो निशान वहां काफी दूर तक स्पष्ट थे। वे दोनों निशान मुझसे दूर होते जा रहे थे, परंतु उनमें से कोई भी निशान वापसी की तरफ नहीं लौटा था। उस मिट्टी से कुछ एक गज की दूरी पर ऐसा लगता था कि जमीन कुछ रौंदी गई है और खाई में लटकी हुई झाड़ियां टूटी और बिखरी हुई थी। मैंने आगे की ओर झुक कर देखा, पर तेजी से आती फुहारों ने मुझे पूरा भिगो दिया। मेरे वहां से चलने के पहले ही अंधेरा हो चुका था और अब मुझे चमकती हुई चट्टानों पर केवल नमी ही दिख रही थी। नीचे दूर तक पानी के गिरने की आवाज थी, मेरे पुकारने पर केवल उसकी प्रतिध्वनि ही आती थी। ये भाग्य का ही खेल था कि मेरे साथी और सहयोगी की अंतिम बधाइयां ही मेरा साथ दे रही थी। उसका सामान अभी भी चट्टान से टिका हुआ रास्ते पर पड़ा था। पास ही के एक पत्थर पर कुछ चमकती हुई सी चीज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा और हाथ बढ़ाकर उठाते हुए मुझे लगा कि यह तो चांदी का सिगरेट का डब्बा है जिसे होम्स हमेशा अपने पास रखता था। मैंने इसे जैसे ही उठाया कि तभी इसके नीचे दबा एक चौकोर कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। इसे खोलने पर मैंने देखा कि ये उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने हैं और इनमें मुझे कुछ संबोधित करने के लिए लिखा है। ये उस व्यक्ति का गुण था कि उसकी दिशा स्पष्ट थी और लिखावट उतनी ही साफ थी कि जैसे ये उसने अपने अध्ययन कक्ष में लिखा हो। प्रिय वॉटसन, मैं कुछ पंक्तियां मिस्टर मोरियार्टी के आभार में लिख रहा हूं, जिन्होंने उन प्रश्नों की अंतिम चर्चा के लिए जो कि हम दोनों के बीच थे मेरी सुविधा का इंतजार किया। उसने मुझे अपने काम के तरीकों की रूपरेखा दिखा दी है, जिसके द्वारा वो अंग्रेज पुलिस से बच निकला और उसने हमारी गतिविधियों के बारे में भी पता लगा लिया। मैंने उसकी काबिलियत के बारे में जो ऊंची धारणा बना रखी थी उसे उसने और भी पक्का कर दिया। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी है कि समाज को उसकी मौजूदगी से होने वाले आगामी प्रभावों से आजाद करवा दूंगा। हालांकि मुझे डर है कि यह सब उस कीमत पर होगा जो कि मेरे साथियों के लिए, खासतौर पर वॉटसन, तुम्हें बहुत ही पीड़ादायक होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मेरा पेशा अपने खास मकाम तक पहुंच चुका है और इससे अधिक अनुकूल इसके समापन की संभावना ही नहीं है। दरअसल मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं कि मुझे पूरा अंदाजा था कि मैरिन जेन से आने वाला वो पत्र एक धोखा है और मैंने तुम्हें इस उद्देश्य से जाने की अनुमति दी थी कि इस मामले में कुछ इसी तरह का नतीजा निकलेगा। इंस्पेक्टर पैटरसन से कहना कि इस गिरोह को कटघरे में लाने के लिए जिन कागजों की उसे जरूरत है वो एम वाले ताले में रखे हुए हैं और उस नीले रंग के लिफाफे के ऊपर मोरियार्टी लिखा है। इंग्लैंड से चलते समय मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई माइक्रॉफ्ट के हवाले कर दी थी। प्लीज मिसेस वॉटसन को मेरी शुभकामनाएं देना और मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा शर्लक होम्स। अब जो कुछ बच गया था उसके लिए संक्षेप में कुछ ही शब्द काफी थे। विशेषज्ञों की छानबीन ने थोड़ी भी शुभा नहीं छोड़ी थी कि दोनों व्यक्तियों के बीच का निजी द्वंद्व समाप्त हो चुका था। सिवाय इसके कोई दूसरा अंत नहीं था कि इस परिस्थिति में वे दोनों एक दूसरे की बाहों में जकड़े लुढ़कते चले गए होंगे। उनके शरीरों को ढूंढने की कोशिश भी पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि वहां उस भंवर वाले पानी के कड़ाह और उफनते झाग में वो खतरनाक अपराधी तथा अपनी पीढ़ी का वो कानून का विजेता हमेशा हमेशा के लिए डूब गया होगा। स्विट्जरलैंड का वो युवक फिर कभी नहीं दिखा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो उन्हीं एजेंट्स में से एक होगा जिसे मोरियार्टी ने रख छोड़ा था। जहां तक उस गिरोह का सवाल है, वो लोगों की स्मृति में था कि वे सबूत कितने पक्के थे जो होम्स ने उनके संगठनों के खुलासे के लिए इकट्ठे किए थे। और उस मृत व्यक्ति का हाथ उस पर कितना भारी पड़ा था। उनके खतरनाक मुखिया के बारे में कुछ बातें मुकदमे के दौरान बाहर आईं। अब अगर मैं उसके करियर के बारे में कुछ कहने के लिए मजबूर हूं तो वो उन बेवकूफ लोगों की वजह से है जिन्होंने उस पर अपने हमलों के द्वारा उन यादों को मिटाने की कोशिश की है जिन्हें मैं हमेशा एक बेहतर और बुद्धिमान व्यक्ति का दर्जा देता रहूंगा। अभी आप सुन रहे थे कहानी अंतिम प्रश्न शेरलॉक होम्स के संकलन से, और इसे आप तक पहुंचाया नयनी दीक्षित ने।